भी हमारे बीच में आदरणीय गीता दीदी सहज ही सुख शांति की अनुभूति कैसे करें इस विषय को आप स्पष्ट करेंगी। आप इस विषय को स्पष्ट करें उससे पूर्व मैं आपका संक्षिप्त में परिचय देना चाहूंगी। डॉक्टर बी के गीता दीदी जी वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका अंतर्राष्ट्रीय वक्ता पॉजिटिव चेंज मेकर कोर्स कराती हैं आप। बीते हुए 32 वर्षों से आप माउंट आबू में सेवाएं दे रही हैं। आपने छात्राओं के लिए एडवांस राजयोग कोर्स तैयार किए हैं जो उनको सिखाती हैं। अब तक आप 5 महाद्वीपों और 60 देशों से भी अधिक देशों में आध्यात्मिक यात्राएं कर चुकी हैं, अनेकों की ज्योत जगा चुकी हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज और उच्च अधिकारियों में मैनेजमेंट कोर्सेस प्रोग्राम आप आयोजित करती हैं। आप डायमंड हॉल में जितने भी राजयोग शिविर के कार्यक्रम रहते हैं उनका भी संचालन आप ही करते हैं। और सबसे बड़ी बात, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड आपको 23 पॉजिटिव चेंज मेकर्स के स्थान पर नेशनल वुमेन्स एक्सीलेंसी अवार्ड प्रोमिनेंट पर्सनालिटी अवार्ड लंदन में 2024 में प्राप्त हुआ है। तो ऐसी महान विभूति आपके समक्ष है, आप इनके शब्दों को बड़े ध्यान से सुनेंगे। सुनना तो बहुत बड़ी बात नहीं है लेकिन ध्यान से सुनना बहुत अच्छी बात है। तो आप जितना ध्यान से सुनेंगे उतना आपके अंदर जाएगा और जितना आपके अंदर जाएगा उतना आपके जीवन में वो धारणा बन जाएगी और आपका जीवन सुख शांति से संपन्न हो जाएगा। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आदरणीय गीता दीदी से आप अपना वक्तव्य शुरू करें जिसमें सुख शांति की अनुभूति हम सबको आप कराएंगी। आदरणीय गीता दीदी, उससे पूर्व 2 मिनट साइलेंस में बैठेंगे, एक अच्छा गीत चलेगा, फिर दीदी का वक्तव्य शुरू होगा।
साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा,
साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा।
मिल गई मंजिल, मिल गया किनारा, मिल गया किनारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना
शांति, ओम शांति। राजयोग द्वारा सुख शांति की अनुभूति, इस विषय पर आज हम सुनेंगे भी अभ्यास भी करेंगे। तो मैं सबसे पहले पूछना चाहती हूँ, आप सभी महानात्माएं खुश हैं? खुश हैं? दोनों हाथ हिलाएं तो पता चले, मुस्कुराते हुए खुश है ना, कोई तनाव नहीं है। क्यों? जिस हॉल में अनेकों बार भगवान का अवतरण हुआ है
ऐसे हॉल में बैठने का भाग्य मिला है, इसलिए पदम पदम गुना मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक। सदियों से, अनेक जन्मों से हम ढूंढ रहे थे, हे भगवान आप कहाँ हो, क्या आप हमें मिल सकते हो, क्या हम आपसे मुलाकात कर सकते हैं। अब वो दिन आ गया है, प्रभु चिंतन में रहकर प्रभु की पालना लेने का समय अभी मिल चुका है। ये कितना ना सौभाग्य है, आप अपने भाग्य को फील करते हैं, पद्मा पदम भाग्य है। क्योंकि संसार में आज भी आप देख रहे हो चारों तरफ तनाव की अनेक धाराएं बह रही हैं, और अनेक सदियों से मनुष्य शांति की खोज में ढूंढता रहा है, कहाँ शांति मिलेगी, सच्ची शांति कहाँ मिलेगी, उसकी प्यास रही है। तो मात्र जंगलों में जाने से सदा काल का सुख, सदा काल की शांति मिलेगी। जंगलों में चले गए जो, अभी वो भी शहरों में आकर बसने लगे, इससे क्या सिद्ध है। जो जंगलों में जाने के बाद जो शांति की अनुभूति हुई, वो प्राकृतिक शांति थी। फिर घर आए वापस, तो फिर वही का वही शुरू हो गया। तो इससे क्या सिद्ध है, मात्र जंगलों में जाने से सदा काल की शांति मिलेगी या नहीं मिलेगी। महानात्माएं बताइए, हाँ जी या ना जी, क्लियर हुआ। इसका मतलब ऐसा नहीं है फॉरेस्ट घूमने नहीं जाना, लेकिन रियलिटी को समझना भी है। फिर हम सोचते हैं चलो खुशी के लिए, शांति के लिए चलो हिल स्टेशन घूम कर आते हैं। अब हाल ही में आपने क्या सुना, कश्मीर गए घूमने के लिए, खुशी के लिए गए, तो सदा काल की खुशी मिली। प्रेजेंट एग्जाम्पल से क्या समझा, एक इंसिडेंट युद्ध का माहौल बन गया, समंदर के किनारे पर जाने से बैठने से जो हवाएं अनुभव होती हैं, लहरें अनुभव होती हैं, जो शांति फील होती है, इससे सदा काल की शांति हमारे अंदर आ जाती है। पूछिए अपने आप से, हम क्या करते हैं बच्चों को खुशी या शांति का अनुभव कराने के लिए। हम प्लान करते हैं ना, चलो हिल स्टेशन वेकेशन पर हम वहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, जाना है, ऐसा नहीं नहीं जाना है, रियलिटी को भी समझना है ना। मात्र वेकेशन पर जाने से या हिल स्टेशन पर घूमने के लिए जाने से सदा काल का सुख और शांति नहीं मिलेगी। क्लियर है, किस किस को क्लियर हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं है घूमने नहीं जाना है, जाइए, लेकिन रियलिटी को भी समझें। अब हमें सुख शांति सदा काल का चाहिए, तो क्या केवल घरों में गृह शांति के लिए जो यज्ञ रचते हैं, तो मात्र यज्ञ रचने से सदा काल का सुख और शांति मिलेगा। जौ, तेल, तिल, घी सब डालते हैं यज्ञ में, ताकि इविल बातें, इविल एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज खत्म हो जाए। ये सर्व सामान्य सहज विधि तो नहीं है, गरीब तो नहीं कर सकते हैं। तो मात्र यज्ञ रचने से क्या सदा काल का सुख और शांति मिलेगा। बोलिए हाँ जी या ना जी, जो कहते हाँ नहीं मिलेगा सदा काल का, वो हाथ हिलाएं तो पता चले, क्लियर हो गए ना। आगे बढ़ते हैं, फिर कहाँ कहाँ हम अपना टाइम देते हैं। लोग कहते हैं भाई आज न्यूज़पेपर्स में क्या आते हैं, समाचार जब लिखते हैं क्या कहते हैं, आज तो एवरेज शांति रही शहर में। तो इससे क्या पता चलता है कि शांति भी एवरेज हो गई है। फिर कई बार पीस कॉन्फ्रेंस करते हैं और भी बहुत सारे टॉक्स करते हैं शांति के बारे में, बोलते 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 फिर लड़ाई शुरू हो जाता है। बैठते हैं शांति की बातें करने, लेकिन अब देखेंगे असेंबलीज में क्या हो जाता है, चर्चा करते करते अशांत हो जाते हैं। तो शांति और सुख क्या है, ये कोई चीज है? अशांति की एब्सेंस शांति नहीं है, शांति की एब्सेंस अशांति है। अंधकार कोई चीज नहीं है, जैसे ही आपने स्विच ऑन किया प्रकाश, जैसे ही प्रकाश आप देख रहे रोशनी आ गई, प्रकाश को जैसे ही हमने देखा तो अंधकार अपने आप खत्म हो गया। तो इसी तरह आज दुनिया में हर एक को फील होता है शांति रियलिटी है या कोई भ्रांति है, क्योंकि इतनी अशांति है। इसीलिए भगवान ने क्या कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्तानाम अधर्मस्य तदात्मानाम सृजाम्यहम् परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दशकृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। समय प्रति समय अनेक धर्म स्थापकाय, अलग अलग धर्मों की स्थापना किया उन्होंने, किया कि नहीं किया? लेकिन डे बाय डे शांति बढ़ रही है या अशांति बढ़ रही है, अनुभव क्या कहता है बोलिएगा, शांति या अशांति? देखो अनुभव में तो यही आ रहा है, जब चारों तरफ अंधकार हो जाता है तब परमात्मा कहते हैं, जैसे श्री कृष्ण ने कहा मैं आता हूं, महाभारत के समय एक घर में अशांति हुई तो श्री कृष्ण का अवतार लेकर आए, कहते हैं अब तो घर घर में महाभारत है, होता है कि नहीं? हर एक का मन कुरुक्षेत्र का मैदान बन गया है, बन गया कि नहीं बन गया? तो जैसे मिसाल के तौर पर हम देखते हैं, अभी अपने आप को देखें, हमारा मन कैसा है? अभी मन के गुलाम है या मन के राजा है? जो कहते हैं मन के राजा है, हाथ उठाए, दोनों हाथ मुस्कुराते हुए, अच्छा मन के राजा है, ऐसे ही रखना ऐसे थोड़ा एक मिनट के लिए। अच्छा जिसको कभी गुस्सा नहीं आता है वो हाथ ऐसे रखना, बाकी सब नीचे कर देना अपने आप। देखो कितने सारे हाथ तो नीचे हो गए, अभी तीन चार तो ऐसे करके बैठे हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है? ऐसा कोई है इस सभा में जिसने कभी झूठ ना बोला हो, हाथ उठाए? है, देखो। तो फिर भी हम कहते हैं मन के राजा हैं, लेकिन हम कहते हैं दादी प्रकाशमणि जी जो एक्स एडमिनिस्ट्रेटिव हेड रही ब्रह्मा कुमारीज के, वो सभा में कहती थी मैंने कभी झूठ नहीं बोला। दादी के लिए बजाइए ताली। तो प्रकाशमणि दादी थी एक्स एडमिनिस्ट्रेटिव हेड इस ऑर्गेनाइजेशन की, तो उन्होंने राज्यों को इतना डीपली अभ्यास किया अपने जीवन में उसकी धारणा की। तो हमें देखना है कि मात्र पैसा कमाने से सदाकाल का सुख और शांति मिलेगा? बोलिए, सदाकाल की सुख सदाकाल की शांति मिलेगी? जो कहते नहीं मिलेगी, हाथ उठाना, थोड़ा पता तो चले, क्लैरिटी मिली? मिली। इसका मतलब ये नहीं है पैसा नहीं कमाना है, लेकिन हमें पता तो होना चाहिए ना हमें कहाँ जाना है। जैसे चंडीगढ़ से आपको आबू आना है, तब गलती से बॉम्बे के गाड़ी में बैठ गए तो कहाँ पहुंचोगे? बोलिए, जाना था आबू लेकिन गाड़ी कौन सी है? बॉम्बे की। पहुंचोगे कहाँ? बॉम्बे। सोच क्या रहे हो हम कहाँ जा रहे आप? क्यों पहुंच गए बॉम्बे? गाड़ी अलग थी। इसी तरह हम जिस तरह चल रहे हैं, कहाँ कहाँ हम अपना टाइम बिताते हैं, पैसा कमाने के लिए भी टाइम देते हैं, खाने पीने के लिए भी टाइम देते हैं, और कहाँ कहाँ टाइम जाता है हमारा, होटलों में जाने के लिए भी टाइम है हमारे पास, किसी ने कहा बहुत सुपर डुपर हिट मूवी है वहां पे जाना है, तो उसके लिए भी टाइम है हमारे पास। के वैसे तो कहते टाइम नहीं है, लेकिन कोई कहेगा बहुत अच्छी मूवी है जरूर जाना चाहिए, तो जाएंगे कि नहीं जाएंगे? कहेंगे हाँ हाँ कोई बात नहीं देख लेते हैं। 3 आवर्स हमने क्या किया, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी। वो भी रो रहे हैं मूवी में, आजकल बच्चे साथ साथ रोना शुरू कर देते हैं, वो हंस रहे हैं तो साथ साथ हम भी हंस रहे हैं। धीरे धीरे क्या हो गया, बॉडी में ऐसे अनहैप्पी हॉर्मोन्स सेक्रेट होना शुरू हो गया, मन को भी आदत पड़ गई, और धीरे धीरे हमने क्या समझा, बिलीफ स्ट्रांग हो गया, अगर वो ठीक तो मैं ठीक, परिस्थिति ठीक हो गई तो मैं ठीक रहूंगी, वो नहीं ठीक तो मैं भी ठीक नहीं। इसलिए जब भी हम इस ज्ञान को सुनाते हैं, माँ बाप कहते बहुत अच्छा ज्ञान है दीदी, आप हमारे बच्चों को पढ़ा दो ये। एक सेंटर पर हम गए थे क्लास कराने के लिए, तो बहुत बड़ा प्रोग्राम था, सब बिजी थे, फोन जैसे बज रहा था तो हमने फोन उठाया, और बच्चा बोलता है दीदी मुझे मेरे मम्मी से मेरे मम्मी पापा आए होंगे वहां पर, लेकिन मुझे आपसे बात करना है। तो बोला अच्छा बताओ क्या है। देखो मेरी मम्मी पापा है ना घर में बहुत झगड़ा करते रहते हैं, ओम शांति में गए ना आप उनको शांत करके भेजना। तो क्या सोच रहे हैं हम, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मैं ठीक हो जाऊंगी, परिस्थितियां ठीक तो मैं सुख और शांति में रह सकती हूँ, ये बदल जाए तो मैं ठीक रहूंगी, ये सही हो जाए तो मैं खुश रहूंगी। अब आप बताइए, पैरेलल रोड्स नेवर मीट। तो इस तरह से हमारा जीवन कैसा हो गया है, जाना था कहां पहुंच गए कहां, अलग अलग दिशाएं, माता जी ऐसे दिखा रहे हैं ऐसे मना अलग दिशा। तो इसीलिए कहीं ना कहीं हमें रुक करके देखना होगा क्या मैं सही रास्ते पर हूं, जो मुझे चाहिए वो मुझे सोचना है, वही मुझे बोलना है, वही मुझे करना है, ये याद रखना, जो चाहिए मुझे वही सोचना है, वही बोलना है, वही करना है। ज्ञान मुरली में परमात्मा ने ये बात बता दिया क्लियर, शांति चाहिए लेकिन सारा दिन कैसी बातें सोच रहे हैं हम, शांति के या शांति के, देखना अपना जीवन देखना। अगर गाड़ी दूसरी पटरी पर चढ़ गई है फिर आप सोच रहे मुझे नहीं मिल रहा है, तो मिलेगा भी नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए ये तो पता करें। जैसे अगर आपको मैं पूछूं आपको लाइफ में क्या चाहिए, इस समय पर क्या बताएंगे, क्या चाहिए आपको, बोलिए क्या चाहिए, इस समय कोई आपसे पूछेंगे आपको क्या चाहिए लाइफ में तो क्या बताएंगे, शांति। और बस शांति मिले तो शांति मिल गई आपको कि और भी कुछ चाहिए, बोलिएगा खुशी, और बोलिए और प्रेम आनंद, ये सब चाहिए ना। इसका मतलब चाहिए मना ये नहीं है मेरे पास इसलिए मुझे चाहिए, चाहिए मना मुझे कभी ना कभी इस चीज का अनुभव हुआ है इसीलिए मुझे चाहिए। तो शांति क्या है, शांति और सुख जो है ये कोई चीज नहीं है, क्या है ये, स्थिति है, मन की स्थिति, जैसा स्मृति वैसा, जैसा जैसा स्मृति होगा वैसी वैसी याद होगी, जैसी याद होगी वैसा चिंतन होगा, और जैसा चिंतन होगा वैसी स्थिति बनेगी, और जैसी स्थिति बनेगी वैसा अनुभव होगा, होगा नहीं होगा। इसलिए भगवान ने क्या कह दिया, तुम्हें शांति ना जंगलों में ढूंढने की जरूरत है, ना हिल स्टेशन पर जाने की जरूरत है, बाहर भटकने की जरूरत नहीं है, तुम स्वयं ही शांत स्वरूप आत्मा हो। तो तो इसीलिए भगवान ने ज्ञान मुरली में बता दिया, ओम शांति से होगी सुख शांति गारंटी है। कैसे होगी? ओम शांति से सुख शांति। कैसे? मैं भी शांत स्वरूप आत्मा, आप भी शांत स्वरूप आत्मा हो तो कभी घर में झगड़ा होगा? ऐसा अभ्यास करेंगे हम, धीरे धीरे समझेंगे अपने आइडेंटिटी को, तो कभी घर में झगड़ा होगा? कभी ऑफिस में झगड़ा होगा? चलो फिर समाज में कभी झगड़ा हो सकता है धर्म के नाम पर। जिस आत्मा ने हिंदू फैमिली में जन्म लिया, खुद को हिंदू समझ लिया। जिस आत्मा ने सिख फैमिली में जन्म लिया, तो खुद को सिख समझ लिया। जिस आत्मा ने मुसलमान के घर में जन्म लिया, खुद को मुसलमान समझ लिया। भगवान ने कहा, तुम धर्म के नाम पर क्यों झगड़ा कर रहे हो? क्योंकि ये शरीर ही नश्वर है, तो तुमने अपना धर्म शरीर के साथ जोड़ा। भगवान ने क्या कहा? तुम शरीर नहीं हो, तुम कौन हो? तुम आत्मा हो। कौन सी आत्मा? सतोगुणी आत्मा। तो ज्ञान मुरली में भगवान ने कह दिया, तुम सतोगुणी आत्मा हो। अगर हम समझ लेंगे मैं सतोगुणी आत्मा हूं, तो कभी ना घर में झगड़ा होगा, ना ऑफिस में झगड़ा होगा, ना समाज में झगड़ा होगा, ना देश में झगड़ा होगा, ना विश्व में झगड़ा होगा। इसलिए कहते ओम शांति से सुख शांति होगी, घर में भी शांति होगी। तो इसको समझना है, क्योंकि जितना जितना हम प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, उतना हमें अनुभव होगा। इसलिए भगवान ने कहा कि सुख साधनों में वैभवों में नहीं है। जो भी तुम्हें सुख मिला वो बहुत ही क्षणिक मिला। आपने सोचा मेरे पास एक गाड़ी होनी चाहिए, मर्सिडीज गाड़ी। गाड़ी आ गई आपके पास तो खुशी आ गई या नहीं आई? आई या नहीं आई? गाड़ी है, लेकिन क्या सदा काल की खुशी है? हो सकता है गाड़ी मिलने के बाद आपको ऐसा कोई न्यूज मिल जाए जिसको आप बहुत प्यार करते हो, बीमार हो गए। अब गाड़ी है लेकिन खुशी नहीं। हमने सोचा गाड़ी आएगी तो खुशी भी साथ में आएगी, लेकिन हमने क्या देखा? गाड़ी तो आ गई लेकिन खुशी सदा काल की नहीं आई। इससे क्या सिद्ध है? साधनों में वैभवों में सदा काल का सुख नहीं है। अंडरस्टैंडिंग, भगवान जो है गाइडेंस देता है। इसलिए श्री कृष्ण ने कहा, ए अर्जुन समझ जाओ तुम कौन हो, तुम कहां से आई हो, कहां जाना है, तुम्हारा कौन है। तो जितना हम समझेंगे उतना स्वीकार करेंगे, जितना स्वीकार करेंगे उतना स्वरूप बनते जाएंगे। सुख साधन वैभव में सदा काल का सुख और शांति हमें नहीं मिलती है। क्लियर है? क्लियर है? तो इसका मतलब ये नहीं है हमें समय नहीं देना है पैसा कमाने के लिए। दीजिए, पैसा भी कमाना है तो 6-7 घंटा उसी में लगा दीजिए, लेकिन कम से कम जहां से सदा काल का सुख और शांति मुझे मिलेगा वहां समय देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? बोलिए, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। तो आज से हमें क्या करना है? 1 घंटा समय निकालकर सेंटर पर जाना है। कौन कौन करेंगे? ऐसे दोनों हाथ हिलाइए जरा मुस्कुराते हुए। ठीक है, अपने लिए ताली बजा दीजिए, बहुत अच्छा। ये एक कदम है, एक कदम आपने रखा। किस लिए जाना है? अगर मैं इस समय आपको पूछूं कि आप शरीर का प्रयोग ज्यादा करते हो या मन बुद्धि का प्रयोग ज्यादा करते हो, बोलिएगा। शरीर का प्रयोग हम ज्यादा करते हैं या मन बुद्धि का प्रयोग ज्यादा करते हैं? जो कहते हैं हम शरीर का प्रयोग ज्यादा करते हैं, हाथ उठाना। देखो 4-5 लोग हैं जो कहते हैं हम अपने मन बुद्धि का प्रयोग ज्यादा करते हैं सारे दिन में। तो मेजोरिटी तो है, फिर भी आज क्लैरिफिकेशन उसका भी आपको मिल जाएगा। जैसे आप बैठे हैं, शरीर बैठा है ना अभी, फिर भी सुन रहे हो, समझ रहे हो, सोच रहे हो, तीनों काम चल रहे हैं। रात को शरीर लेटा हुआ है फिर भी सपने देख रहे हो, तो कौन ज्यादा काम कर रहा है? शरीर को फिर भी आराम मिल रहा है, लेकिन मन बुद्धि को आराम मिला तो इससे क्या सिद्ध हुआ? क्या सिद्ध हुआ? ज्यादा काम कौन करता है? मन और बुद्धि। लेकिन खिलाते किसको ज्यादा समय? शरीर को। तो बुद्धू है या बुद्धिमान है? नहीं नहीं, आप सब बुद्धिमान हो, तभी तो यहां पहुंच गए हो, इसलिए मुबारक हो, सब बुद्धिमान हो। तो अब आपको नई दिशा जो मिल रही है, दृष्टिकोण मिल रहा है, किस तरह से मुझे देखना है हर कोई चीज, अपने आप को भी कैसे देखना है, तो ये जो समझ मिल रही है, ज्ञान के आधार पर आपका दृष्टिकोण बदल रहा है, डायमेंशन बदल रहा है। बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? एक जैसे बहुत साहूकार परिवार के तीन बच्चे क्या करते हैं कि वो अपने अंकल के घर में जाते हैं, खास करके उसके पिताजी प्रोग्राम बनाते हैं कि जाओ तुम अंकल के घर में जाओ, अनुभव करके आओ। तो अमीर परिवार के थे तो कहते हैं जाओ वहां अनुभव करके आओ, तीनों बच्चों को भेज देते हैं। जब तीनों बच्चे चले जाते हैं 15 दिन के बाद लौट कर आते हैं तो पूछते कैसा अनुभव रहा अंकल के घर का। दो बच्चे कहते हैं उनका घर तो बहुत छोटा है, अपने जैसा बोला वैसा ही है, हम तो बहुत अमीर है। तीसरा बच्चा कहता है नहीं नहीं पापा वो तो बहुत अमीर है। पूछते कैसे? देखो हमारे घर में 4 रूम है, खटिया है, लेकिन उनके तो इतने बड़े बड़े हैं क्योंकि वो आंगन में ही सोते हैं, आंगन में ही रहते हैं ज्यादातर, घर का तो कुछ नहीं है लेकिन आंगन में रहते हैं, खटिया भी उनका जो बड़ा साइज का है। कहते हमारे घर में एक स्विमिंग पूल है, उनके तो घर के बाहर इतनी बड़ी लेक है। फिर कहता है देखो यहाँ हमारे पास, हमने 2 कुत्तों को पाला हुआ है, वहां तो कितने 10-15 कुत्ते वैसे आ जाते हैं। तो बच्चा कहता है वो ज्यादा अमीर है। तो तीनों बच्चों को एक ही जगह पर भेजा गया लेकिन तीनों का अलग अलग अनुभव है, ऐसा क्यों? दृष्टिकोण। जैसा दृष्टिकोण होगा वैसे विचार होंगे ना, जैसी याद होगी वैसा ही हमारा विचार होगा, जैसा विचार होगा वैसी स्थिति बनेगी, वैसा अनुभव होगा। होगा कि नहीं होगा? तो इसीलिए क्या कहा जाता है, सोच को बदलिए सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलिए नजारे बदल जाएंगे। कश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं है, दिशाओं को बदलिए किनारे खुद ब खुद मिल जाएंगे। तो डायमेंशन को चेंज करना है, दृष्टिकोण। हमारा डायमेंशन कैसा है, किस चीज को हम देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? इसीलिए जैसे शरीर का हम ध्यान रखते हैं, 3 चीजें करते हैं हम, आराम भी देते हैं शरीर को, खाना भी खिलाते हैं, प्लस एक्सरसाइज भी करते हैं। 3 चीजें जरूरी है शरीर के लिए। अब हमने समझ लिया मन बुद्धि का प्रयोग हम ज्यादा करते हैं, तो मन बुद्धि के लिए सबसे पहले ज्ञान का भोजन देते रहो। 3 टाइम दिया, चेक करो ज्ञान का भोजन दिया, ज्ञान स्नान कराया मन को बुद्धि को। और दूसरी बात है आराम। आराम यानी जैसे कभी आप देखते होंगे अमृत वेले में यहां आकर सो जाते कई लोग, क्योंकि मन को आराम मिल जाता है। खटिया पर सोए होंगे लेकिन नींद नहीं आएगी, लेकिन यहां आओगे ना ऐसे विचार सुनते 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 नींद कर लेंगे, होता है ना? या तो एक्टिव हो जाओगे या तो सो जाओगे, ये तो आपकी स्थिति के ऊपर है। तो इसी तरह जैसे आराम करते तो मन को आराम मिलता है योग के कारण। तो तीसरी चीज है चिंतन। चिंतन के माध्यम से हमें सुख शांति का निर्माण करना है। किस माध्यम से? चिंतन के माध्यम से। अगर हमने चिंतन को नहीं बदला तो चिंता में रहेंगे। इसलिए भगवान ने मुरली में कह दिया, या तो चिंतन में बिजी रहो या तो चिंता में पड़े रहो। क्या अच्छा, चिंता या चिंतन? तो आपके ऊपर है। कैसा चिंतन करते हम सारा दिन। जैसे समझ लीजिए यहाँ तो सब फ्री है ना, फ्री है, इतना फ्री है कहीं क्लास में नहीं है, बाहर शॉपिंग में भी बिजी हो गए हैं। तो कहने का तात्पर्य है यहाँ पहुंचने के बाद भी यहाँ बैठने के भाग्य उसका भी मार्क्स है। यहाँ तो पहुंच गए, कोई पुण्य था यहाँ तक पहुंच गए, यहाँ पहुंचने के बाद भी आप बाहर हो तो समझो फिर और पुरुषार्थ करना पड़ेगा आपको। लेकिन जो बैठ गए वो महान भाग्यशाली, अपने लिए जोरदार ताली बजा दीजिए, कोई बात। तो कहने का तात्पर्य है कि इसके लिए भी बहुत पुण्य का जो कर्म है, जमा पूंजी चाहिए तब भी बैठ सकते हैं यहाँ पे। जैसे IAS में तो सब पहुंच नहीं सकते ना, भले रूप साधारण है आपका लेकिन मेहनत आपने अनेक जन्मों से जो की है तभी यहाँ बैठने का भाग्य मिला है। ऐसे नहीं बैठे हो आप यहाँ, इसके लिए आप एलिजिबल बने तब यहाँ पर आए। तो इसीलिए परमात्मा ने कहा कि विधि को समझ जाओ। अब हमें पता है शरीर से हम ज्यादा काम नहीं करते, हमारा मन बुद्धि ज्यादा काम करता है। क्लियर है, आगे बढ़े, कोई डाउट नहीं है ना इसमें। अब मन बुद्धि क्या है, ये आत्मा के, जैसे हमने पहले लेसन में भी सुना है, मन बुद्धि क्या है, मन बुद्धि संस्कार जो है आत्मा के सूक्ष्म शक्तियां है। स्थूल कर्मेंद्रिय दिखाई पड़ता है लेकिन सूक्ष्म शक्तियां विचारों के माध्यम से, हमें इन सूक्ष्म शक्तियों को परिवर्तन करना है। चिंतन, आत्मचिंतन, परमात्म चिंतन, शुभ चिंतन, श्रेष्ठ चिंतन, स्वचिंतन, मुरली चिंतन, इसके माध्यम से हमें परिवर्तन करना है। इसलिए दो प्रकार का इंटेलिजेंस है, एक है रैशनल इंटेलिजेंस, दूसरा है इमोशनल इंटेलिजेंस। रैशनल इंटेलिजेंस क्या है, व्यक्ति आज दिन तक बाहर जाता गया, चलो बाहर मुझे कंप्यूटर में क्या चल रहा है, स्पेस में क्या चल रहा है, चांद पर मुझे प्लॉट खरीदना है, बुद्धि को बाहर 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 की ओर लेकर जाता गया, तो वहां पर उसको उपलब्धियां मिलने लगी। जब वो अंदर जाने लगा तो वहां कोई इंस्टेंट प्रूफ नहीं मिलता है, बाहर क्या मिल जाता है, बुद्धि को बाहर लेकर गया तो इंस्टेंटली प्रूफ मिलता गया, तो उसको क्या लगा, अच्छा चलो अंदर तो कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, इससे अच्छा बाहर ही बिजी रहो। तो इसलिए आज लोग दुनिया में साइंटिफिकली एकेडमिकली बहुत हाई पोजिशंस पर है, इतना डेवलप्ड होने के बाद भी भय चिंता तनाव क्यों है, क्या हम सचमुच डेवलप्ड है, सोचो। क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस अंदर जो है ना वो अनुभूति के माध्यम से आपको प्रूफ मिलता है। अंदर जब जाते हो अनुभव ही नहीं हो रहा है तो क्या करोगे, चलो ना घूमने जाते हैं, यहाँ तो बैठे बैठे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा वैसे अच्छा है लेकिन अंदर जाने से अपने पाप कर्मों का बोझ इतना होगा कि अंदर हमें अनुभव नहीं होगा। तो अनुभूति के माध्यम से अंदर हमें अनुभव करना है, चिंतन के माध्यम से। अभी तक हम क्या करते गए, बाहर भटकते गए, भटकते गए क्योंकि हमने सोचा मैं शरीर हूं। अब शरीर को खुश रखने के लिए जो जो बातें शरीर को सुख देता है, अच्छा फर्नीचर लेकर आए, अच्छा सोफा सेट लेकर आए, उसमें बैठकर शरीर को सुख मिला, इससे थोड़ा सा मन को भी आराम मिल गया, तो हमने क्या सोचा, चीजें बढ़ाओ घर में, फ्रिज, गाड़ी, मोटर, मकान, ज्वेलरी, सोफा, ये सब बढ़ाते जाओ। हमने सोचा ये सब तो बढ़ गया है लेकिन सुख शांति वाला गार्डन अभी सूखा पड़ा है। क्यों, जर्नी अलग थी, खुद को शरीर समझ लिया, शरीर को जो सुख मिला उसी से हमने समझ लिया इसी से मिलेगा, लेकिन अब यहां आकर के क्या मिला, यहां आकर के हमें सच्चा ज्ञान मिला जिससे बुद्धि में रोशनी आ गई। कौन सी रोशनी आ गई, कि हम खुद ही स्वयं ही क्रिएटर्स हैं, हम जैसा चाहे वैसा निर्माण हम कर सकते हैं। अभी तक हम क्या सोच रहे, दूसरों के ऊपर डाल करके, देखो परिस्थिति ऐसी है, ये लोग ही ऐसा है इसीलिए मैं ऐसी हूं, कहीं तो हाई मिल रहा था चलो बहुत अच्छा, ये सब ठीक हो जाएगा तो मैं आराम से सुख शांति में रहूंगी। अब यहां आकर कौन सा ज्ञान मिला? चाहे कैसा भी हो बाहर, परिस्थितियां बाहर है, व्यक्ति बाहर है, लेकिन ऐसा ज्ञान मिल गया, कोई व्यक्ति, किसी की आदत, किसी की हरकत डिस्टर्ब नहीं कर सकती है, वो है राजयोग। उसको सीखने के लिए आप यहां आए। मन का राजा, परिस्थिति बाहर, व्यक्ति बाहर, किसी की आदत, किसी की हरकत, किसी की बातें, वो मुझे डिस्टर्ब कर रही है, क्योंकि मन बुद्धि को हमने बातों में, संबंधों में, घटनाओं में, इंद्रिय रस में भटकाते हैं। जितना भटकाते हैं मन भटकता जाता है। मन को तो, मन तो एक छोटा बच्चा है, उसको पता ही नहीं है कहाँ जाना है। उसने सोचा कोई नहीं है मेरे ऊपर, मालिक कोई नहीं है, चलो मुझे जैसा चलना है मैं चलूंगा। अब धीरे धीरे ऐसा हाल हो गया कि मन के गुलाम बन गए, मन हमें चला रहा है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द माइंड? एक मिनट में 25 to 30 थॉट्स, सारे दिन में 30,000 to 40,000 थॉट्स। और क्वालिटी क्या है? क्वालिटी क्या है उसका? पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। कौन कहते हैं पॉजिटिव है? सारे दिन में 40,000 विचार एक व्यक्ति निर्माण कर सकता है, इतनी कैपेसिटी है आत्मा के अंदर। तो जो कहते हैं हमारा 40,000 विचार पॉजिटिव है, वो हाथ उठाना जरा। नहीं है, नहीं है। अच्छा, दूसरा प्रकार कौन सा है? नेगेटिव है। नेगेटिव तो जानते हो ना, ईर्ष्या, द्वेष, रिवेंज की फीलिंग, डिप्रेशन की फीलिंग। तीसरा कौन सा है? आवश्यक विचार, मुझे वहां जाना है, चाय पीना है, मुझे भोजन करना है, ये सब आवश्यक विचार है। फिर चौथा प्रकार है, वो है वेस्ट। या तो पास्ट की बातें सोचते रहते हैं या तो फ्यूचर की बातें सोचते रहते हैं। 80% तो पास्ट में ही रहते हैं, मेरे साथ तो ऐसा हो गया, बस वही चिंतन चलता रहता है। या तो फ्यूचर में रहते, मुझे आगे ये करना है, वो करना है, वो करना है। अब पहुंच गए लेकिन फिर भी कोई रिजल्ट नहीं है। या तो पास्ट में बिजी है या तो फ्यूचर में बिजी है, प्रेजेंट में नहीं है। अब कई बार हम पूछते कितने परसेंट में प्रेजेंट में, बोलते माइनस में है, अभी तो वो भी नहीं है। सोचो, अब जैसे घर में जाने के बाद माताओं का काम क्या है? क्या काम है माताओं को? भोजन बनाना है या नहीं? देखो माता जैसे कर क्या करे, यहाँ तो फ्री है, यहाँ तो जाओ बस प्लेट उठाना है और जितना चाहिए उतना लेना है। और भाइयों को भी कोई चिंता नहीं है, क्यों? क्यों? कोई बिजनेस आदि का कोई टेंशन नहीं है, यहाँ तो न्यूज़पेपर पढ़ने का भी टेंशन नहीं है, है ना? इनपुट भी अच्छा है। अब देखो न्यूज़पेपर में सबसे ज्यादा नेगेटिव बातें होता है या पॉजिटिव बातें ज्यादा होता है? आप लोग ज्यादा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, तो क्या कौन सी बातें होती हैं? देखो आपको पता है, फिर नेगेटिव इनपुट क्यों डाल रहे हो? जो भोजन लोगे वही तो एनर्जी बनेगा ना, तो इसीलिए हम कैसी बातें ले रहे हैं। देखो चाहिए क्या? सुख शांति। और कैसी बातें अंदर डाल रहे हैं? नेगेटिव। देखो इनपुट क्या है, देख लेना, साक्षी होकर देखना हम कैसे करते हैं, सारा दिन कहाँ जाते हैं। तो यहाँ धंधा आदि का भी कोई टेंशन नहीं है भाइयों को, और माताओं को भी कोई टेंशन नहीं है, है या कोई नहीं? वहां जाकर के तो भोजन बनाना है। तो इस तरह माताएं क्या करती हैं? भोजन बनाती हैं। तो एक माता जी ने 2 महीना मेहनत किया और एक डिश बनाना सीख लिया यूट्यूब से। आजकल रेसिपीज यूट्यूब में मिलते रहते हैं ना, तो फिर उन्होंने अच्छे से सीख लिया। फिर जिस दिन डिश बन के रेडी हो गई, जैसे 2 महीने के बाद अच्छे से प्रैक्टिस करके उसको कॉन्फिडेंस आ गया, मैं ये डिश अच्छे से बना सकती हूँ, तो जिस दिन बनाकर रेडी कर दिया उसी दिन मेहमान आ गए, तो माता जी क्या सोचती होंगी? आज ही आना था उनको, ऐसा सोचेंगी है? वो उनके ऊपर है। लेकिन उस दिन उन्होंने क्या किया, चलो मेहमान आए उनको भी खिला दिया, फिर बच्चों को भी खिला दिया, बच्चों ने भी कुछ नहीं बोला, खा के वो भी चले गए स्कूल, और फिर पति को खिलाया, पति ने भी कुछ नहीं बोला। अब बोलो खुशी का ढोल बजेगा? खुशी का ढोल बजेगा कि नहीं? माता जी कह रहे ऐसे 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 ऐसे, माना हाँ या ना? ना। चलो माता जी ने क्या किया, चलो मैं पति से पूछ लेती हूँ। पति को बुलाया और पूछा, अच्छा इतना तो बताओ, 2 महीने से मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, भोजन तैयार कर, मतलब ये डिश बनाया आप लोगों के लिए, इतना तो बताओ कैसे बना? अगर भाई साहब ने कह दिया ठीक है अच्छा बना है, लेकिन मेरी माँ जैसे तुमने नहीं बनाया, अब क्या होगा? अभी यहाँ तो हंस रहे हो और वहां क्या होगा? समझ लीजिए, उन्होंने कहा और वो चल पड़े, उनके पास डेटा डिलीट हो गया और आपने क्या कर लिया? डेटा, बोलिए बोलिए, क्या कर लिया? सेव कर लिया। देखो कितना होशियार है, सब एक ही आंसर कह रहे हो। तो कैसा चिंतन चलेगा सारा दिन? इसी को लीजिए, इसी एग्जाम्पल को। सारा दिन कैसे विचार आएंगे? बहुत अच्छे अच्छे, नहीं खुशी के विचार आएंगे, ऐसे 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 ऐसे। हाँ कैसे करते हैं? ऐसे ऐसे ऐसे, या ऐसा ऐसा ऐसा, हाँ भी ना भी। तो उसी समय समझ लीजिए आपके बेस्ट फ्रेंड का फोन आता है, तब क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? मेरा तो घर में, आगे बोलिए, आपके आपका तो अनुभव है ना, क्या कहेंगे? पूछने की देरी है, कैसी हो आप, क्या बोलेंगे? मेरा तो घर में, आगे बोलिए। देखो सब हंस रहे हैं, देखो भाई भी हंस रहे हैं, पता है आगे क्या बोलेंगे? मेरा तो घर में। देखो सबका एक ही आंसर होगा, कोई कोई कीमत ही नहीं है, या पता नहीं क्या क्या बोल, फिर सब कुछ बोलकर उनको बता देंगे, किसी को बताना मत। ऐसा कहकर फिर उन्होंने अपने फ्रेंड को फोन किया, उनको भी बता दिया, भाई किसी को बताना मत। ऐसे कहकर सबको पता है क्या हो रहा है, आपको लग रहा है किसी को पता नहीं है। अब भाई साहब आ गए शाम को, उनको तो पता ही नहीं है क्योंकि डेटा डिलीट हो गया है ना, आपके पास तो डेटा सेव है। तो अगर उन्होंने आकर के, उनको तो याद भी नहीं है ना क्या हुआ, वो आकर के आपके पास आए और उन्होंने पूछ लिया, अच्छा बताओ आज रात का भोजन क्या बनाया तुमने, तो क्या बोलोगे? अभी देखो सब मुस्कुरा रहे हैं, माताएं भाई ज्यादा मुस्कुरा रहे हैं, भाई आंसर तो आपको ही मिलता है ना। हाँ तो बताइए क्या आंसर मिलेगा, हाँ कोई भी उठ के बताए, हाँ खड़े हो जाए भाई, बताओ क्या आंसर मिलेगा, क्या आगे वाले बता दें? अच्छा माँ को ही, माँ के पास ही चले जाओ सीधा, हाँ वहीं पे डायरेक्ट। कितना अनुभवी भाई बैठा है, देखो आपके लिए ताली भी बज रही है, हाँ कितना खुश है, मना देखो पता है ना, यहाँ तो ताली बजा रहे हो और वहां क्या बजाओगे? हाँ अनुभवी हो आप सभी, क्योंकि यहाँ देखो खुश है ना, तो यही बात सुनकर आपको हंसी आ रही है, लेकिन वहां पर क्या होता है? टेंशन हो जाता है, घर में हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो ऐसी चीजों में कौन सी बातें हमें हेल्प करेगी? अब आप ये बताइए, सुख शांति का निर्माण अगर हमें करना है तो कैसे होगा? अब आपने बहुत कुछ जाना है एक दो दिन में, अब आपको इसका सार क्या मिला? अगर सुख शांति का निर्माण करना है, घर को मंदिर बनाना है, स्वर्ग बनाना है, तो कैसे बनेगा? हाँ कोई भी उठकर बताए इसमें कैसे बनेगा, अभी भी सोच रहे हैं, बताइए कैसे बनेगा? हाँ वो बहुत अच्छा है, आपके सारे आंसर सही है, फिर भी सही आंसर क्या है? राजयोग करना। राजयोग में भी क्या करना है, क्या समझ आ गया? घर को मंदिर बनाना कैसे बनेगा? और देखिए अभी यही सिचुएशन को लीजिए, अभी अभी जो आपने सुना, अगर आपका एक तो रिश्ता खराब हुआ, दूसरा टाइम खराब हुआ, तीसरा हेल्थ भी बिगड़ गया, बिगड़ा कि नहीं बिगड़ा, तीनों गया है ना, इसी सिचुएशन में आपने याद कर लिया, जैसे बच्चे याद करते ना, जैसे आप बच्चों को सिखाओ चॉकलेट नहीं खाना, तो आप कभी चॉकलेट देंगे ना उस बच्चे को, कहेंगे नहीं नहीं मुझे नहीं खाना है, क्यों? मेरे मम्मी ने सिखाया। इस तरह ज्ञान मुरली में जितने भी क्लासेस आप सुन रहे हो ना, ये बहनें अपनी बातें नहीं बता रही हैं, ज्ञान मुरली में स्वयं भगवान ने जो बातें बताई, आगे ज्ञान मुरली का क्लास आपके लिए अलग से रहेगा, लेकिन उन्हीं महावाक्यों का संकलन ही ये एक एक क्लास जो बहने सुना रहे हैं। आत्मा से संबंधित जो बातें बताई वो आत्मा के लेसन के रूप में बहनों ने आपके समक्ष रखा, इसलिए ये परमात्मा का दिव्य ज्ञान है। तो परमात्मा ने कौन सा रहस्य बताया? सदा सुख शांति में जीना चाहते हो तो आधार क्या है? इसी सिचुएशन को आप ले लीजिए, तो बाबा कहते हैं बच्चे धीरज धारण करो। आपने याद कर लिया, ज्ञान मुरली में भगवान ने कहा है धीरज को धारण करो, तो आपने धीरज को धारण किया और आपने माता जी को फोन लगाया, बोला आपकी तो बहुत महिमा हमने सुना है, तो आप बहुत अच्छा बनाते हो, आप मुझे सिखाओगे? आपने पूछ लिया, मुरली सुना, पॉइंट क्लिक हो गया, भाई धीरज का गुण मुझे धारण करना है। तो माता जी से आपने बात कर लिया, माता जी को भी अच्छा लगा, आपका रिश्ता भी अच्छा हो गया, टाइम भी बच गया और आपका हेल्थ भी अच्छा हो गया और आपका घर स्वर्ग बन गया एक गुण के आने से। समझ रहे हैं ना? एक गुण, एक धीरज का गुण धारण कर लिया तो घर स्वर्ग बन गया। बोलो सभी गुण आपके अंदर आ जाएगा तो आपका घर कैसे बन जाएगा? इसीलिए मनुष्य से देवता बनने के लिए आए हैं हम। किस लिए आए हैं हम? मनुष्य से देवता। एक एक गुण हमारे अंदर धारण हो जाए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ग्रेटिट्यूड यानी थैंक यू, परमात्मा से थैंक्स कहो। जो प्राप्तियां आपके पास है उसके लिए थैंक्स कहें, जो भी आपके पास प्राप्तियां हैं, क्योंकि हमें इंटरनल सिस्टम को समझना है। हमारा एक एक विचार कैसे निर्माण होता है? पास्ट एक्सपीरियंसेस के आधार पर। अगर कोई इन्फॉर्मेशन आ जाता है न्यूज़पेपर के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, और भी बहुत सारे आउटलेट्स हैं, उसके माध्यम से कोई इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाता है, उसके आधार से हमारे विचार चलना शुरू कर देता है। फिर एक तो पास्ट एक्सपीरियंस, दूसरा इन्फॉर्मेशन, तीसरा बिलीफ सिस्टम। जैसा बिलीफ सिस्टम आपका होगा उस अनुसार आपके विचार क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अब हमारे पास कौन सा हथियार आ गया? कौन सा आ गया? हम मन को साक्षी होकर देखेंगे और उसको परिवर्तन करेंगे, है या नहीं? अभी मन क्या है? छोटा बच्चा है, उसको क्या करना है? देखना है और उसको कहना ऐसा नहीं ऐसा। जैसे छोटा बच्चा है, गिर जाता है, उसको क्या करोगे? चलो उठो, चल पड़ो आगे। इसी तरह मन छोटा बच्चा है तो उसको आपको क्या करना है? चलाना है। ठीक है ना? क्लियर हो गया? क्योंकि आपने अभी से अभ्यास करना है। जितना जितना अभ्यास करते रहोगे समय पर काम आएगा। जैसे 365 डेज पढ़ाई करते हो तो एक दिन एग्जाम आता है, जिंदगी में तो हर दिन एग्जाम है। तो परमात्मा ने जो राजयोग की विधि बताई वो करेंगे तो क्या होगा? धीरे 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 हमारे अंदर धीरे 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 वो शक्ति बढ़ती जाएगी। इसीलिए सेंटर पर जाकर मुरली सुनना है। क्यों? वहां योगियों का संग है, वाइब्रेशन है, इसलिए सेंटर पर जाना जरूरी है। करेंगे? हाथ उठाइए। क्योंकि अभी हमें समझ में आ गया, घर को मंदिर बनाना है, घर में सुख शांति का निर्माण करना है तो हम अपने अंदर दैवी गुणों को धारण करें। जितना दैवी गुण बढ़ेगा उतना घर में शांति बढ़ेगी। क्योंकि देखो हम मकान का, दुकान का, परिवार का, बच्चों का, सबका ध्यान रखते हैं। अगर हमने खुद का ध्यान नहीं रखा, खुद ही बीमार है, क्या हम उनका ध्यान रख सकते हैं? लेकिन आज हमारा मन बीमार है लेकिन हम उसका ध्यान नहीं रख रहे हैं, इसलिए मन हमें चला रहा है। लेकिन राजयोग के माध्यम से भगवान ने हमें क्या कहा कि तुम स्वयं ही शांत स्वरूप आत्मा हो, बाहर भटकने की जरूरत तुम्हें नहीं है, ना जंगलों में है, ना हिल स्टेशन पर है, ना वो तो जो अनुभव हुआ शांति वो प्राकृतिक शांति थी। आनंद के लिए बाहर भटकने की जरूरत नहीं है, होटल में जाकर खाना मतलब पिक्चर देखना, इससे आनंद मिलेगा लोगों ने सोचा। अब अनुभव क्या कहता है? उससे आनंद नहीं मिला। परमात्मा ने सिंपल बता दिया तुम स्वयं ही आनंद स्वरूप आत्मा हो। कितना बड़ा हथियार मिल गया, मिला कि नहीं मिला? क्योंकि हम जैसा चाहे वैसा अपना बना सकते हैं। एक गार्डन बनाने के लिए सब कुछ करना पड़ता है ना, ध्यान रखना पड़ता है। जंगल बनाने के लिए कोई ध्यान नहीं रखो, अब मन क्या बन गया? जंगल जैसा। अब हमें क्या बनाना है? गार्डन बनाना है। तो क्या करना है? देखना है मन को। करें? सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। थोड़ा सा अभी हम थैंक्स भी करेंगे, परमात्मा ने यहाँ पहुंचा दिया और बहुत सुंदर हथियार दे दिया सुख शांति का निर्माण करने के लिए। सबसे पहले धन्यवाद करें, जो कुछ आपके पास है उसके लिए उस ईश्वर का धन्यवाद करेंगे। अब जैसे आप देखते हैं ना, बिल्ली क्या करती है, चूहे को पकड़ती है, तो कैसे पकड़ती है, ध्यान देती है, बस चूहा आया पकड़ लो। इसी तरह हम क्या करेंगे, मन को देखना शुरू कर दीजिए। देखिए अपने अंदर, चाहे आंखें ओपन करके रखे, क्लोज करके रखे, अपने ऊपर है, शुरुआत है आपकी, तो जैसा इजी रहे, इजी लगे ऐसा करें। बीच में बैठने का मन करें तो बैठ सकते हैं। अभी अपने मन बुद्धि को देखिए प्यार से, इधर उधर तो हम देखते आए लेकिन अभी हम मन बुद्धि को देखेंगे। अपने मन से बातें करेंगे, हे मेरे मन, मैं तुम्हारा राजा हूं, आज दिन तक तुमने मुझे चलाया, मैं तुम्हारा गुलाम बन गई, लेकिन यहां आबू में आकर स्वयं परमपिता परमात्मा की सच्ची कृपा मेरे ऊपर रही, उन्होंने इतना सुंदर ज्ञान दिया, तो आज से मैं आपको कैसे चलना है आपके ऊपर ध्यान दूंगी, हे मेरे मन मैं आपको सिखाऊंगी। हे मेरे मन, आज मैं तुमसे बात करने आई हूं, रोज मैं दूसरों से बातें करती रहती हूं लेकिन आज मैं तुमसे बात करती हूं, क्योंकि जीवन जीने की कला परमात्मा ने सिखाया है मुझे, आबू में आकर मेरा जीवन धन्य बन गया। हे मेरे मन, जरा सोचो, जब मैं रात को सोकर सुबह उठती हूं, जब मैं अपना ही चेहरा आईने में देखती हूं, जो रूप नजर आता है, मैंने सोचा यही मेरा नाम है, यही मेरा रूप है, लेकिन जरा सोचो, एक ना एक दिन इस शरीर को छोड़कर जाना है, मैं चाहूं या ना चाहूं ये शरीर एक दिन छूट जाएगा। मेरे घर वाले मुझे कहते रहे, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, बहुत प्रेम करता हूँ, हे मेरे मन, जरा सोचो, जब मैं शरीर को छोड़ देती हूँ, मेरे चाहने वाले वही इस शरीर को जला देते हैं एक दो घंटे में। जिंदगी भर मुझे कहते रहे, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, तो शरीर को ही प्यार करने लगे थे। हे मेरे मन, जरा सोचो, स्वयं भगवान ने दिव्य ज्ञान दिया है, जिससे मेरी बुद्धि में रोशनी आ गई है, सद्विवेक जाग उठा है, ये शरीर नश्वर है, घर में घर के लोग मेरे पहने हुए जूते चप्पल भी घर में रखते हैं, कपड़े भी घर में रख लेते हैं, मेरे फोटो भी रख लेते हैं, लेकिन शरीर को नहीं रखते। हे मेरे मन, मैं अब तक खुद को शरीर समझती रही, इसलिए शरीर की चीजों को बटोरने में मैंने सारा समय लगा दिया, शरीर को खिलाना पिलाना सुलाना और इसको घुमाना और इसके लिए कमाना। हे मेरे मन, मैं सारा समय इसी में बिजी रही, आज से मैं आत्मा मैं राजा हूं। हे मेरे मन, तुम्हें मैं गाइड करूंगी, कहां जाना है कहां नहीं जाना है। हे मेरे मन, दिव्य बुद्धि से ज्ञान के आधार पर आज से मैं अपना जीवन व्यतीत करूंगी। ये शरीर नश्वर है, लेकिन मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूं। हे मेरे मन, चलो ऊपर की ओर। मैं मस्तक के बीच में चमकने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। मैं तुम्हारा राजा हूं। दिव्य बुद्धि से देखेंगे, मस्तक के बीच में आत्मा चमक रही हूं। मुझ आत्मा का लाइट चेहरे के चारों तरफ, शरीर के ऊपरी भाग से लेकर पैरों के तले तक फैला हुआ है। लाइट के बॉडी में मैं खड़ी हूं। शरीर के आकार में लाइट का आकार। हे मेरे मन, जब तक मैं आत्मा इस शरीर में विराजमान हूं, तब तक शरीर का वैल्यू है। मैं जैसे ही निकल जाती हूं, शरीर का कोई भी कर्म इंद्रिय काम नहीं करता। इससे सिद्ध है ना, मैं कर्म इंद्रिय नहीं हूं। इन कर्म इंद्रियों को चलाने वाली, इन आंखों से देखने वाली, इन कानों से सुनने वाली, इस मुख से बोलने वाली, हाथ पैर चलाने वाली, मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं। हे मेरे मन, आज से मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा बनकर मन बुद्धि संस्कार को परिवर्तन करूंगी। ऐसा सुंदर ज्ञान देने के लिए हे मेरे मन, चलो ईश्वर की तरफ, सूर्य चांद तारागण के पार। जैसे यहां खड़े खड़े मैं आसमान को देख सकती हूं, इसी तरह मैं धीरे धीरे मैं आत्मा स्थूल लोक से परे जा रही हूं। मन बुद्धि मेरे सहयोगी बन चुके हैं, दिव्य बन चुके हैं। मैं प्रकाश में शरीर से ट्रैवल कर रही हूं, शरीर से ऊपर की ओर जा रही हूं। संपूर्ण ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म वतन में विराजमान है। वहां पर मैं अपने प्रकाश में तन को छोड़कर बाबा दृष्टि दे रहे हैं। फिर मैं धीरे धीरे मैं आत्मा ज्योति स्वरूप में स्वर्णिम लाल प्रकाश की उस दुनिया में जा रही हूं, जहां प्रेम का सागर परमात्मा मुझे निस्वार्थ प्यार दे रहे हैं। पूरे ब्रह्मांड में प्रेम की किरणें बाबा के फैल रहे हैं। असीम शांति, असीम प्रेम का अनुभव हो रहा है, और परमात्मा की प्यार की किरणें मेरे प्रकाश में काया पर, स्थूल काया पर पड़ रही है। प्यारे बाबा का मैं धन्यवाद करती हूं। प्यारे बाबा, आभू में आकर मुझे इतना दिव्य ज्ञान मिला है, मेरे जीवन का अंधकार खत्म हो गया है। प्यारे बाबा, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। जीवन जीने की कला आपने सिखाई, सुंदर जीवन कैसे बनाना है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है बाबा। स्वस्थ शरीर देने के लिए, यात्रा बहुत अच्छे से कराने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद है बाबा। स्वस्थ शरीर देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। आप मेरे पिता बनकर मुझे बहुत प्रेम दिया आपने। सुंदर प्रोफेशन देने के लिए, मेरे जीवन के चैलेंजेस में मेरे साथ खड़े रहने के लिए, निस्वार्थ प्यार देने के लिए, प्यारे बाबा मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूं। परमात्मा की प्यार की किरणें, जैसे बाप बेटे को गले लगाते हैं, इस तरह प्यार की किरणें आपके ऊपर बरस रही हैं, महसूस करें। अपने दोनों हाथों को खोल दें, प्यार को भरपूर कर दीजिए, कमल के समान दोनों हाथों को कर लें, परमात्मा का प्यार भर लीजिए, परम धाम से स्वयं परमात्मा शिव बाबा प्रकाश में प्रेम की किरणें बरसा रहे हैं। फिर से मैं आत्मा प्रकाश में काया में प्रवेश कर रही हूँ और स्थूल शरीर में उतर रही हूँ, अपने आप को प्रकाश में काया में देख रही हूँ और परमात्मा की किरणों को अपने अंदर भर रही हूँ। धीरे से दोनों हाथ अपने दिल पर रख लीजिए, प्यार से दिल से कहें, हा हे मेरे दिल, अभी तुम डरना मत, स्वयं भगवान मुझे प्यार से भरपूर कर रहा है, मुझे कोई भी प्रॉब्लम टच नहीं कर सकते, मेरे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के जितने भी टॉक्सिन्स है वो रिलीज होते जा रहे हैं, मैं एकदम पावरफुल बनती जा रही हूँ, स्वयं सर्वशक्तिवान मेरे साथ है, मैं अकेली नहीं हूँ, ऐसा सुंदर ज्ञान परमात्मा ने दिया, मेरे दिल को मजबूत किया, इसलिए मैं कहूँगी मिथे बाबा, प्यारे बाबा, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है बाबा। प्यार से शरीरों को बिठा दें, बैठ जाएं, जिसको बहुत अच्छी फीलिंग आई वो हाथ उठाएं। तो इसी फीलिंग में रहना है। अब समझ लो ऐसे टाइम पर कोई बात आ जाए तो आप कितना स्टेबिलिटी से हैंडल करोगे ना, क्योंकि जैसा विचार वैसी फीलिंग, याद स्मृति चिंतन, जैसा चिंतन वैसे विचार, जैसा विचार वैसी फीलिंग, और जैसी फीलिंग होगी उसका असर हमारे परसेप्शन पर भी पड़ेगा, हमारे इमोशंस पर भी पड़ेगा, वैसी हमारी वाणी होगी और जैसी वाणी होगी वैसा कर्म होगा, और बार बार जो कर्म करोगे वो आदत बन जाएगा, और जो आदत बन जाएगा वो हैबिट बन जाएगा, हैबिट बन जाएगा वो आपकी पर्सनैलिटी बन जाएगी। तो कैसा स्पीड में चल रहा है, एक मिनट में 25 to 30 थॉट्स, ऐसे तो 40,000 विचार। इस लेवल पर हम परिवर्तन करेंगे तो कितना मुश्किल का अनुभव होगा। परमात्मा ने सिंपल बता दिया, मुझसे सर्व संबंध जोड़ो, मुझे प्यार करो, तो मैं गारंटी देता हूं तो कोई भी बात, किसी की हरकत, किसी की आदत तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकती, गारंटी देता हूं। लेकिन जिसने संपूर्ण तरीके से समझ लिया, स्वयं शिव बाबा आ चुके हैं इस धरती पर, मुझे वो सिखा रहे हैं हाउ टू यूज द राइट पावर एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस इन द राइट वे, क्योंकि सारे विश्व में ऐसा यूनिवर्सिटी नहीं है जहां आपको ये ज्ञान मिल जाए। जिसे गाड़ी चलाना आता है ना, किस किस को आता है, जहां ब्रेक लगाना है वहां स्पीड बढ़ा दिया, जहां स्पीड बढ़ाना है ब्रेक लगा दिया, दोनों केसेस में क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया। कौन से शक्ति का प्रयोग कब करना है, कहाँ करना है, वो हमें पता ही नहीं है। तो लेकिन ज्ञान मुरली रोज सुनोगे, सेंटर पर जाकर सुनोगे, तो आपको ये ज्ञान मिल जाएगा कहाँ कौन सी शक्ति का प्रयोग हमें करना है। मात्र ज्ञान पर्याप्त नहीं है, ज्ञान के साथ साथ क्या चाहिए, शक्ति चाहिए। क्या चाहिए बोलिए, क्या चाहिए ज्ञान के साथ साथ, शक्ति। अब गुस्सा नहीं करना है, पता है ना, तो छोड़ दो। दुर्योधन ने क्या कहा, मुझे सब कुछ पता है लेकिन धर्म पर चलने की शक्ति नहीं है। तो पता बहुत कुछ है हमें लेकिन शक्ति नहीं है, शक्ति कहां से मिलेगी, जब परमात्मा के साथ सर्व संबंध जोड़ेंगे तब उनसे शक्ति मिलेगी। वो हमारा माता भी है, पिता भी है, सखा भी है, स्वामी भी है, सतगुरु भी है, साजन भी है, तो बेटा भी है, दोस्त भी है। सर्व संबंध आपने जोड़ लिया भगवान के साथ, तो आपको एक एक संकल्प पर मेहनत करने की जरूरत नहीं है, उनके प्यार में मगन हो जाओ, उनको स्वीकार कर लो उनके प्यार को, तो मेहनत सारी मोहब्बत में खत्म हो जाएगी और आपको योग करना भी इजी लगेगा, क्योंकि जैसा संबंध होगा वैसी बातें होगी ना। अभी पिता है तो उससे क्या बात करना है वो पता होगा ना, माता है तो क्या बात करना है पता है कि नहीं पता है? तो योग में क्या करना है? और सबसे सुंदर समय है योग का अमृत वेला। कौन सा समय है? 4 बजे का समय है अमृत वेला। तो राजयोग का अभ्यास कब करना है हमें? अमृत वेले के समय पर। ऐसे श्रेष्ठ चिंतन में हम रहेंगे, सारा दिन रहेंगे। समझ लो किसी ने कह दिया भाई आपका काम अच्छा नहीं है, मुझे क्या लगेगा मैं ही अच्छी नहीं हूं, तो सारा दिन कैसे संकल्प चलेंगे? पता तो है ना आपको। लेकिन प्रैक्टिस कर लिया मैं शक्तिशाली आत्मा हूं तो क्या होगा? परिस्थिति आई, आपको जो कहना था आपने कह दिया, लेकिन मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, स्वयं भगवान मेरे साथ है, मुझे कोई बात डिस्टर्ब नहीं कर सकती, तो परिस्थिति पर आपका विजय हो जाएगा। तो इसीलिए परमात्मा के साथ सर्व संबंध जोड़े, उनको याद करे। याद भी 4 स्टेजेस पर होता है, होता है कि नहीं होता है? एक है परिचय के आधार पर, परिचय तो मिल गया परमात्मा का, मिला सबको हाथ दिलाना मिला। और दूसरा है संबंध के आधार पर, अब आपको ये भी पता चल गया सर्व संबंध हम जोड़ सकते परमात्मा के साथ। तीसरा है स्नेह वाली याद, मगन वाली, प्यार वाली। तो ये तो इजी है ना, जिससे प्यार हो जाता है उसको कोई मेहनत करना पड़ेगा एक एक संकल्प पर? नहीं, अपने आप प्यार में शुक्रिया करते हुए परमात्मा के प्यार में मगन हो जाएगा। और चौथा है प्राप्ति के आधार पर, प्राप्ति, मुझे क्या क्या प्राप्ति मिला, वो भी थोड़ा स्वार्थ के ऊपर वो भी याद करते हैं लोग। लेकिन हमें स्नेह में मगन हो जाना है, परमात्मा के स्नेह में। तो इसी तरह जब हम परमात्मा के स्नेह में रहेंगे, संबंध जोड़ेंगे, तो निश्चय भी बढ़ जाएगा। एक बच्ची फ्लाइट में ट्रैवल कर रही थी तो बीच में टर्बुलेंस हुआ, तो क्या हुआ भाई, सब जैसे सब शेक होने लगा, तो सब टाइट, जैसे बेल्ट टाइट बांध देते हैं तो इस तरह बेल्ट पहन लो, फासन योर बेल्ट्स कहते हैं, और फिर सब चिंता भय में थे। तो बाद में थोड़ा समय के बाद जब शांत हो गया, ठीक हो गया, टर्बुलेंस खत्म हो गया, तो उस बच्ची को पूछा गया, तुम तो आराम से खुशी से बैठी थी हा? तो उसने कहा मेरा पिता ही पायलट है, वो फ्लाइट चला रहा है, तो मेरा तो कुछ अच्छा ही होगा क्योंकि मेरा पिता फ्लाइट चला रहा है। तो क्यों, मेरा पिता कौन है? मैं आत्मा हूं तो मुझे आत्मा का पिता कौन है? स्वयं शिव बाबा। निश्चय हो जाए, ऐसे ही कहने के लिए नहीं है, स्वयं भगवान मेरा पिता है, प्यार करो। एक एक संकल्प को कहां तक परिवर्तन करोगे? जैसे जड़ों में पानी डालो तो अपने आप ही फल फूल सब सबको मिलेगा ना, ब्रांचेस को मिलेगा, सबको सबको मिलेगा पानी। इसी तरह कौन सा गुण कौन सा पावर को मुझे यूज करना है उस पर चिंतन नहीं करना पड़ेगा। हर कोई काम भगवान के साथ करो, हर कोई काम परमात्मा को बता के करो। जैसे एक छोटा बच्चा क्या करता है, मम्मी पापा को बता के करता है ना, तो माँ बाप को कैसे याद करते हैं? उनके गुणों के आधार पर, उनके पालना के आधार पर, मेरे मम्मी ने सिखाया था। इसी तरह यहां आकर के जो ज्ञान मिल रहा है वो दीदियां नहीं दे रही है, स्वयं भगवान दे रहा है ये ज्ञान। तो परमात्मा ने मुझे इतना सुंदर ज्ञान दिया, वो जो भी आपको मिला है उसके लिए आप धन्यवाद करें। तो ज्ञान मुरली में एक एक बात परमात्मा हमें ज्ञान मुरली के माध्यम से समझाते हैं, उस पर हमें क्या करना है? विचार सागर मंथन। क्या करना है हमें? विचार सागर मंथन करना है। मेरे पप्पा ने क्या कहा उस पर विचार सागर मंथन करें। तो अगर वो मात पिता है तो बंधु सखा भी है, सतगुरु भी है, लेकिन पात्र साफ चाहिए ना। अगर पात्र गंदा है तो क्या करेंगे? अभी समझो एक घड़ा है, फिक्स है, गंदे पानी से भरा हुआ है, फिक्स है, और ऊपर से कोई होल है, तो उसको, उस घड़े को मुझे शुद्ध पानी से भरना है तो क्या करना पड़ेगा? बोलिए माताएं क्या करना पड़ेगा? घड़ा है, गंदे पानी से भरा हुआ है, फिक्स है, और ऊपर से छोटी सी होल है, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? शुद्ध पानी भरना है तो क्या करना पड़ेगा? बार बार शुद्ध जल डालना पड़ेगा। इसी तरह मुझे क्या करना पड़ेगा? बार बार शुद्ध विचार देने पड़ेंगे। अब मन, अब मैं बैठी हूं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मन कहेगा चुप बैठो, बहुत गुस्सा करती रहती हूँ। अब किसने गुस्सा किया, कब किया, लाइन ही बदल जाता है। क्यों बदल जाता है? क्योंकि मन को हमने क्या समझा, मन मुझे चला रहा है। अब मुझे क्या पता चल गया, मन को मुझे चलाना है, मन को कहना है तुम चिंता मत करो, चलो परमात्मा के पास। जैसे धूप है, जैसे सनलाइट है, जाकर खड़े हो जाओ, अपने आप लाइट मिलेगी ना। इसी तरह परम धाम में चले जाओ, शिव बाबा के पास, दिल की हर बात उसे कह दो, अपना बोझ उसे दे दो, हल्के हो जाओ। वो ऐसा दोस्त है ना, खुदा दोस्त। अनेकों मिसाल है, भक्त शिरोमणि को आपने देखा, मीरा ने कृष्ण को पति बनाया तो जहर भी अमृत बन गया, बना कि नहीं बना। ऐसे कई मिसाल है। परमात्मा की याद में हम करेंगे, उसको दोस्त बनाएंगे, अमृत वेला करोगे तो भगवान से दोस्ती हो जाएगी, गारंटी है। करोगे, अमृत वेला करना है तो अमृत वेला पावरफुल कर लीजिए, और सारा दिन हर घंटे में, आधे घंटे में हमें अनुभव करना है। सुख शांति का निर्माण हमें स्वयं करना है, ऑटोमेटिक नहीं है, ये बदल जाए वो बदल जाए, नहीं। अपने विचारों के माध्यम से, चिंतन के माध्यम से परमात्मा के साथ संबंध जोड़कर उनसे बातें करना है। एक माता ने भगवान को, शिव बाबा को बेटा बनाया, और बेटा बनाकर उसने देखा भाई उसके तीन बेटे विदेश में हैं, उसको बेटा बनाया। तो जब वो बीमार हो गई एक दिन, तो फिर उसने कहा कि मैंने भगवान, मैंने तुम्हें बेटा बनाया। उसने तन से भी सेवा किया, मन से भी सेवा किया, धन से भी सेवा किया। समझो बच्चों के लिए कुछ प्रेजेंट गिफ्ट लेकर आती थी ना, तो बाबा के घर सेंटर के लिए भी कुछ लेके आती थी। संबंध निभाया, केवल संबंध जोड़ा नहीं, निभाया भी। उसके पास इतनी शक्ति आ गई, जब वो बीमार हो गई ना, उसने भगवान से कहा शिव बाबा मैंने तुम्हें बेटा बनाया, तुम्हें आना पड़ेगा। तो उसको प्यास लग रही थी, उठ नहीं पा रही थी, उसको ऐसा लगा उसका गला सूख गया, सूखा हुआ है। तो जैसे जैसे शिव बाबा को याद किया, गला जैसे गीला होने लगा, उसको ऐसा फीलिंग आया। तो फिर धीरे धीरे उसको ऐसा लगा जैसे उसका पैर दबा रहा है और जैसे सुला रहा है, आराम से सो गई। और नेक्स्ट डे आकर के सबको अनुभव सुनाया, मैंने शिव बाबा को बेटा बनाया तो उसने मेरी पालना की। तो प्यार का संबंध जोड़ना है और प्यार से बात करनी है, और हर एक मुरली के पॉइंट का विचार से मन सागर मंथन करना है, उसको अपने जीवन में धारण करना है। कितना सिंपल है या नहीं है। एक माता, जब हम एक जगह पर गए थे तो आई और मेरे से कहने लगी कि दीदी मुझे है ना सुख शांति का जीवन जीना है, अपने घर को स्वर्ग बनाना है, तो आप कोई फॉर्मूला दे दो। मैंने कहा देखो आज के मुरली में बाबा ने कहा हौली हंस बनो, तो आप घर जाओ जब भी, जैसे उसके घर में तीन बेटे तीन बहुएं थे, तो फिर वो गई और तीन दिन उसने प्रयोग किया। जब भी बहू कुछ लेकर आती थी, पानी लेकर आती थी, कुछ भी लेकर आती थी, सेवा करती थी, प्यार से क्या कहती थी, बहू बहुत अच्छी हो, तो लाइन सिखा दिया, मुस्कुराते हुए क्या कहना, बहुत अच्छी हो। बोलो आप भी एक दूसरे को बोल दीजिए, क्या कहेंगे आप, बहू मत बोल देना, बोल देना अच्छे हो, बहुत अच्छे, बोलिए दिल से बोलिए। हाँ, तो जो भी मिलेंगे उनको क्या कहेंगे, बहुत अच्छे। तो उसने तीन दिन अभ्यास किया, तो तीन दिन में उसका घर स्वर्ग बन गया। उसने बताया हमको आकर के, मेरा घर अभी सुख शांति से एकदम संपन्न हो। तो रोज सेंटर पर जाना है, रोज मुरली करना है, अमृत वेला करना है, करेंगे करेंगे, और सारा दिन चिंतन मुरली के आधार से करना है, ठीक है। तो अभी हम फिर अभ्यास करेंगे 10 मिनट, सुख शांति का कैसे निर्माण करना है उसका प्रैक्टिस करेंगे, कैसे संबंध जोड़ना है परमात्मा से वो हम थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अभी सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, शरीरों को खड़ा करें, ऐसे खड़े नहीं हो जाना है, मैं आत्मा इस शरीर को कह रही हूँ खड़े हो जाओ, ठीक है। प्रैक्टिस करें, शरीरों को बिठा दें, फिर से बैठ जाएं, ऐसे बैठना नहीं है, मैं आत्मा इस शरीर को बिठा रही हूँ, फिर शरीरों को खड़ा कर दो, ये शरीर उठ जाओ, पैर उठ जाओ, अभ्यास करें। दोनों हाथ आगे हैं, दोनों हाथों को आगे करते हुए मैं आत्मा इन हाथों को चला रही हूँ, दोनों को कंबाइन कर लीजिए, लॉक कर लीजिए, मेरी ओर मोड़ दीजिए, अब ऊपर की ओर लेकर जाइए, प्रैक्टिस भी करिए, मैं आत्मा इन हाथों को ऊपर कर रही हूँ, सतो गुणी आत्मा इस शरीर में बैठी हूँ, और सामने की ओर लेकर आए हैं, आत्मा सतो गुणी आत्मा प्यार से इन हाथों को कैसे हिला रही हूँ मैं, नहीं तो हाथ हिलेंगे नहीं, प्रैक्टिस करना है। अपने ओर मोड़ दीजिए, अनलॉक कर दीजिए, हैंड्स अपार्ट, हाथ नीचे, शरीर रिलैक्स हो गया। अब फिर से मस्तक के बीच मैं आत्मा चमक रही हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मन बुद्धि संस्कार के भी मालिक, इन कर्मेंद्रियों के भी मालिक आत्मा बैठी हूँ, ईश्वर का बच्चा हूँ। मुझे निश्चय हो गया है मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना है। हे मेरे मन, आज से मैं तुम्हें डायरेक्शन दूंगी, मैं तुम्हारा राजा हूँ। देखो अपने आप को लाइट बॉडी में देखें, शरीर में रहते शरीर से अलग, चेहरे के चारों तरफ आत्मा की लाइट को फील करें, शरीर के ऊपरी भाग से लेकर पैरों के तले तक प्रकाश में लाइट के शरीर में मैं खड़ी हूं। महसूस करेंगे सूर्य चांद तारागण से भी पार लाइट बॉडी में तैरती जा रही हूं, जैसे हवा में उड़ रही हूं, सूक्ष्म वतन में जा रही हूं। वहां संपूर्ण ब्रह्मा बाबा विश्व का आदि पिता संपूर्ण लाइट बॉडी में बैठे हैं, मुझे दृष्टि दे रहे हैं, वो प्यार दे रहे हैं, उनके नजरों से मैं निहाल हो रही हूं। शक्तिशाली दृष्टि बाबा दे रहे हैं, प्रकाश में काया को वहां छोड़कर मैं परम धाम में जा रही हूं। स्वयं भगवान मेरे मात पिता है, आज से मुझे कोई चिंता नहीं, अपने दिल के सारे प्रॉब्लम उसे अर्पित कर दो, उसे दे दो। प्यारे बाबा आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, आपने मुझे इतना सुंदर ज्ञान दिया, मेरा सद विवेक जाग उठा है, बुद्धि में रोशनी आ गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है बाबा। मुझे बाहर भटकने की जरूरत नहीं है, मैं स्वयं ही शक्तिशाली आत्मा हूं, और जैसे जैसे परमात्मा मात पिता मेरे ऊपर शक्तिशाली किरणें बरसा रहे हैं, मेरे अंदर का भय कमजोरी समाप्त हो रही है। जैसे बाप बेटे को गले लगाते हैं, माँ अपनी बेटी को गले लगाती है, इस तरह शक्तिशाली किरणें परमात्मा की परम धाम से फव्वारे के माफिक मुझ पर बरस रही हैं। लाइट बॉडी के ऊपर भी परमात्मा की किरणें बरस रही है, मेरा लाइट बॉडी भी चार्ज हो रहा है, मेरा स्थूल बॉडी भी चार्ज हो रहा है, मस्कुलर सिस्टम के सारे टॉक्सिन्स रिलीज हो रहे हैं और मैं सक्षम बनती जा रही हूँ। अब राइट साइड मुड़ जाओ, शरीरों को मुड़ दो राइट साइड, आपके राइट साइड में टर्न कर लो शरीरों को। लाइट बॉडी में खड़े हो जाओ फिर से, स्थूल बॉडी से अलग साक्षी होकर स्थूल बॉडी से डिटैच हो जाओ। हे मेरे मन, मेरी खुशी किसी के खुशी पर आधारित नहीं है, मेरा सुख किसी के सुख पर आधारित नहीं है, मेरे आनंद की स्थिति किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, मैं डिटैच हूं, सबकी सेवा करूंगी लेकिन मैं स्वयं सक्षम हूं, क्योंकि स्वयं आनंद का सागर परमात्मा मेरे सतगुरु है। परम धाम से सतगुरु बनकर शिव बाबा मेरे ऊपर पवित्र किरणें बरसा रहे हैं। महसूस करेंगे अपने दिल की सारी चिंताएं, जो भी अपवित्रता है, जो भी विकारी कर्म आत्मा ने किए हैं, उसे सौंप दो पवित्रता के सागर शिव बाबा के पास। प्यारे शिव बाबा, आप मेरे सतगुरु हो, आज से मैं इन सारे विकारों का दान कर रही हूं, आपको अर्पित कर दे रही हूं। आज से तन से, मन से, जीवन से, धन को भी पवित्र बनाऊंगी, पवित्र सेवा में लगाऊंगी। महसूस करेंगे परम धाम से पवित्र किरणें मुझ पर बरस रही है। स्वयं भगवान से मेरा प्यार है, उनका भी मुझसे प्यार है। हे मेरे मन, देखो कितना सुंदर ज्ञान भगवान ने मुझे दिया, जिससे मेरे सारी कठिनाई दूर हो गई। अब मुझे निश्चय हो गया है, मुझे हर बात परमात्मा से करनी है। मैं महसूस कर रही हूं पवित्र किरणें बरस रही है, और मेरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जितने भी टॉक्सिन्स है वो रिलीज हो रहे हैं, और मैं आत्मा सक्षम बनती जा रही हूं, हेल्दी बनती जा रही हूं। अब राइट साइड मोड़ दो शरीरों को, बैक साइड, और महसूस करेंगे स्वयं परमात्मा शिव बाबा माता बनकर आपको प्यार दे रहे हैं। प्यारे शिव बाबा, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, आपने मुझे इतना सक्षम बनाया, आप मेरे माता हो, आपका कितना ना मैं धन्यवाद करूं। मुझे प्यार मांगने की जरूरत नहीं है, आप प्यार के सागर हो, रोज मैं आपके पास आऊंगी, अपने मन बुद्धि को चार्ज करूंगी बाबा। जैसे सूरज के सामने जाने से सूर्य की किरणें अपने आप मिलती है, मैं रोज आपके पास आऊंगी बाबा। आप प्यार के सागर हो, आपकी प्यार की किरणें मैं स्वीकार करती हूं। महसूस करेंगे स्वर्णिम लाल प्रकाश के उस दुनिया में स्वयं परमात्मा विराजमान है, सुप्रीम लाइट, और उनकी प्यार की किरणें बरस रही है मेरे ऊपर। मेरे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के जितने भी टॉक्सिन्स है वो रिलीज हो रहे हैं, स्वयं भगवान मेरे माता है। आज से रोज परमात्मा के साथ मैं बातें करूंगी, मैं उनके प्यार को स्वीकार करूंगी। हे मेरे मन, तुम मेरे सहयोगी बन जाओ, और परमात्मा के प्यार की किरणों से आपका मन बुद्धि भी चार्ज हो रहा है, आपका लाइट बॉडी भी चार्ज हो रहा है, तो आपका स्थूल बॉडी भी चार्ज हो रहा है, आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम मजबूत हो रहा है। अब राइट साइड मोड़ दो शरीरों को, मैं आत्मा पैरों को चला रही हूं, इन पैरों से मैं अलग हूं। अब महसूस करेंगे स्वयं सुख का सागर, शिव बाबा, सुप्रीम लाइट, स्वर्णिम लाल प्रकाश की उस दुनिया से सुख की किरणें बरसा रहा है मेरे ऊपर। प्यारे बाबा, मेरे जीवन के सारे दुख खत्म करने के लिए, मेरे दोस्त बनने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है बाबा। आपकी कृपा है, आप मेरे सच्चे दोस्त हो, आज से मैं आपको दोस्त के रूप में स्वीकार करती हूँ। मैंने बहुत सारी कहानियां सुनी है खुदा दोस्त के बारे में, यहाँ आबू में आकर मैंने आपके साथ दोस्त का रिश्ता, दोस्ती का नाता जोड़ा है, दोस्ती का रिश्ता जोड़ा है बाबा। मेरे सारे दुख आपने खत्म कर दिया, मुझे सुख बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, यह आपने मुझे सिखा दिया बाबा। सुख ना साधनों में है, ना वैभवों में है, ना महलों में है, ना माड़ियों में है। आज दिन तक मैं भटकती रही, मन को भटकाती रही। प्यारे बाबा, इतना सुंदर ध्यान ज्ञान देने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद है बाबा। स्वयं खुदा दोस्त बनकर परमात्मा सुख की किरणें बरसा रहा है, महसूस करें उन सुख की किरणों को, स्वीकार करें। जिस हॉल में अनेकों बार भगवान आए, ऐसे हॉल में आने का, ऐसा सुंदर योग का अनुभव करने का भाग्य मिला। हे मेरे खुदा दोस्त, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। मैं स्वयं ही आनंद स्वरूप आत्मा हूं। इन कर्मेंद्रियों को जीत कर मैं अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर सकती हूँ। मैं सुख का निर्माण स्वयं कर सकती हूँ। महसूस करेंगे सुख के सागर की किरणें आपके शरीर के कण कण में प्रवेश कर रही है। आपका लाइट बॉडी, फिजिकल बॉडी चार्ज हो रहा है। डाइजेस्टिव सिस्टम के जितने भी टॉक्सिन्स है वो बाहर रिलीज हो रहे हैं। हेल्थ भी बहुत अच्छा हो रहा है। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस देने के लिए बाबा आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। अब शरीरों को सामने की ओर मोड़ दीजिए। महसूस करेंगे उस साजन को, सुप्रीम लाइट के प्यार को, स्वर्णिम लाल प्रकाश की इस दुनिया में सुप्रीम लाइट के समक्ष में आत्मा उपस्थित हूँ। स्वयं शिव बाबा मेरे ऊपर शांति की किरणें बरसा रहे हैं। शांति धाम में, पूरे ब्रह्मांड में परमात्मा की असीम शांति की किरणें फैल रही है। मैं दिव्य बुद्धि से देख सकती हूँ, महसूस कर सकती हूँ। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, आप मेरे माता भी है, पिता भी है, गुरु भी है, दोस्त भी है, तो साजन भी है। हर संबंध से मैं आपको स्वीकार करती हूँ। ऐसे निस्वार्थ प्यार देने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद है बाबा। महसूस करेंगे परम धाम से जैसे शांति का फुव्वारा बरस रहा हो। परम धाम से पावरफुल लाइट, शांति की लाइट आपके ऊपर बरस रही है। महसूस करें आपका लाइट बॉडी भी चार्ज हो रहा है। आप लाइट बॉडी से स्थूल शरीर में प्रवेश कर रहे हो। रेस्पिरेटरी सिस्टम के जितने भी टॉक्सिन्स है वो रिलीज हो रहे हैं। कण कण में शांति, परमात्म शांति प्रवेश कर रही है। घर के जितने भी सदस्य हैं उनको भी शांति का दान दीजिए। सारे आपके शहर में जितनी भी आत्माएं हैं उनको भी शांति का दान दीजिए। अशांत आत्माओं को, मुझ आत्मा से सबको शांति का दान मिल रहा है। मैं शांति का फरिश्ता हूँ, शांति का अवतार हूँ। मेरा जन्म महान कर्तव्यों के लिए हुआ है। मुझ आत्मा का स्वधर्म ही शांति है। हे मेरे मन, मैं इस स्वधर्म को सहर्ष स्वीकार करती हूँ। परमात्मा की किरणें शरीर के हर कण में प्रवेश कर रहे हैं। चलते फिरते, उठते बैठते, आज से मैं अभ्यास करूंगी इस कर्म क्षेत्र पर। मैं शांति का फरिश्ता हूँ। इन आंखों से देखने वाली, इन कानों से सुनने वाली, इस मुख से बोलने वाली, मैं शांत स्वरूप आत्मा, सुख शांति का निर्माण मैं स्वयं कर सकती हूँ। मीठे बाबा, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। परमात्म किरणों के नीचे मैं सुरक्षित हूँ। बैठ जाएं, शरीरों को बिठा दें। तो जिसको अच्छी फीलिंग आई वो हाथ उठाएं। तब अभ्यास जारी रखेंगे, पहले अंदर फिर ऊपर फिर नीचे आकर कर्म करना है। क्लियर है? राजयोग में पहले अंदर विचारों का निर्माण, फिर परमात्मा से संबंध, फिर नीचे आकर के चलते फिरते उठते बैठते अभ्यास करना है। सुख शांति का मैं क्रिएटर हूं। ठीक है, करेंगे सभी। ओम शांति।